दिन भर तारीख 17 जुलाई दिन मंगलवार, मैं हूं वात्सल्य राय। बॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भीड़ तंत्र के भयानक तरीके नहीं बन सकते चलन, संसद बनाए नया कानून।
आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो सारे भारत के हित में, उनको जो है समर्थन मोदी सरकार से मिलना चाहिए।
झारखंड के पाकुड़ में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर हमला।
ये कानून अपने हाथ में लेकर के जो वो समझ रहे हैं किसको क्या सजा देनी है वो दे रहे हैं। मॉब अटैक, मॉब लिंचिंग, इस तरह के लोग हैं।
और राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने की पार्टी उपाध्यक्ष की छुट्टी।
बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय प्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।
खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज मॉब लिंचिंग को अलग अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही और सरकार से कहा कि इसकी रोकथाम के लिए वो एक नया कानून बनाए। मॉब लिंचिंग और गोरक्षकों की ओर से हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता और यह राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें। यूरोपीय संघ और जापान ने एक मुक्त व्यापार समझौता किया है जो दोनों तरफ के व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क को लगभग पूरी तरह खत्म कर देगा। टोक्यो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताते हुए कहा कि इसने संरक्षणवाद की नीतियों के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया है। ये समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुक्त व्यापार की नीतियों के उलट अपने यहाँ आयात शुल्क बढ़ा रहे हैं। समझौते के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा,
We are putting in place the largest bilateral trade deal ever.
हम अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं। नियमों से बंधी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए यह असाधारण रणनीतिक महत्व की घटना है, एक ऐसे समय में जब कुछ लोग इस व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं। हम ये साफ संदेश दे रहे हैं कि हम एक साथ संरक्षणवाद के खिलाफ खड़े हैं। ये थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के शब्द। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांशेज ने संसद को बताया है कि बलात्कार के मामलों में अस्पष्टता को खत्म करने के लिए उनकी सरकार यौन सहमति पर एक नया कानून लाएगी। सरकार के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि स्पष्ट सहमति के बिना बनाए गए शारीरिक संबंधों को बलात्कार माना जाएगा। इसी साल स्वीडन ने भी ऐसा ही कानून बनाया है। स्पेनिश प्रधानमंत्री पेद्रो सांशेज ने कहा,
Para fortalecer las instituciones y los cambios normativos que hagan
देवियों और सज्जनों, हम ये उपाय लेकर आ रहे हैं। स्पष्ट सहमति के विचार को समायोजित करते हुए इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रशिक्षित लोगों की मदद से हम ऐसा करेंगे। साफ साफ कहें तो इसका मतलब होगा कि ना का मतलब ना और हाँ नहीं की गई तो उसका मतलब भी ना। ये थे स्पेनिश प्रधानमंत्री पेद्रो सांशेज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के दर्जनों आम नागरिकों ने गोलान हाइट्स में इसराइली सेना के ठिकानों पर पहुंचकर शरण या किसी और तरह की मदद मांगी है। इनमें से कुछ सफ़ेद झंडे लहरा रहे थे, लेकिन इसराइली सैनिकों ने उन्हें इलाका खाली करने की चेतावनी दी। दक्षिण पश्चिम सीरिया में सीरियाई सेना के अभियान के बाद विस्थापित हुए हज़ारों आम नागरिक सीमावर्ती इलाकों में जमा हो गए हैं। इसराइल ने उन्हें सीमा पार करके अपने अधिकार वाली ज़मीन पर आने की इजाज़त नहीं दी है, लेकिन सीमा पार सहायता ज़रूर भेजी है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूते ने मलेशिया एयरलाइंस के विमान M17 को गिराए जाने की घटना को याद करते हुए एक कार्यक्रम की अगुवाई की। 4 साल पहले यह विमान जब एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था तब यूक्रेन के ऊपर से गुजरते हुए इसे गिरा दिया गया था और इसमें सवार 298 लोगों की मौत हो गई थी। एक जांच में ऐसे सबूत पाए गए थे कि विमान से टकराने वाली मिसाइल मॉस्को में बनाई गई थी और उसे रूसी सेना ने सप्लाई किया था। रूस इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार करता रहा है। ब्रेक्जिट योजना को लेकर ब्रिटिश सरकार संसद में एक और बगावत का सामना कर रही है। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के 2 पूर्व मंत्रियों ने मौजूदा योजना में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था होने तक यूरोपीय सीमा शुल्क संबंधी संघ से जुड़े रहना चाहिए। विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा है कि वह इस संशोधन का समर्थन करेगी। चीन की सबसे महंगी फिल्मों में से एक को खराब शुरुआत के बाद सिनेमाघरों से वापस ले लिया गया है। असुरा नामक ये फिल्म 6 साल में बनकर तैयार हुई थी और इसमें 680 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च आया था, जबकि रिलीज होने के शुरुआती दिनों में यह 70 लाख रुपए ही कमा पाई थी। माना जा रहा है कि यह फिल्म के निर्माता इस पर दोबारा काम करने पर विचार कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। कल यानी बुधवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सदन चलाने में सहयोग मांगा। लेकिन क्या सरकार को सहयोग मिलेगा? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए।
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, तो इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के सभी पार्टियों से मिलकर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम लाएंगे।
संसद सत्र में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। उधर संसद सत्र शुरू होने के पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा कि वो मॉब लिंचिंग को लेकर नया कानून बनाने पर विचार करे। इस मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कानून का राज कायम रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारें ऐसी घटनाओं को लेकर कान बंद नहीं कर सकती। पूरी रिपोर्ट बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद से।
अदालत के आदेश सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पुनेवाला और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा गौरक्षकों की हिंसा पर जांच करने की मांग की याचिका पर सुनवाई के दौरान आए हैं। आदेश में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, कोई भी नागरिक अपने आप में कानून नहीं बन सकता। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि वो संविधान के मुताबिक काम करें। तीन न्यायाधीशीय खंडपीठ के नेतृत्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा, भय और अराजकता के मामले में राज्य को सकारात्मक कार्य करना पड़ेगा। हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती। फैसले पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरज सिंह ने कहा, अब दबाव मोदी सरकार पर है।
देखिए, ये जो भी सजग नागरिक है उसका काम है, मीडिया है उसका काम है, इस चीज पर सही चीजों पर फोकस करें। और उसका दबाव पड़ता है, पार्लियामेंट पे भी दबाव पड़ता है और सरकार का भी कर्तव्य बनता है। मोदी अगर जो है इतिहास में एक पार्टी के हेड माने जाएंगे या वाजपेयी जी की तरह राष्ट्र धर्म की रक्षा करने वाले माने जाएंगे, एक पॉलिटिशियन माने जाएंगे या स्टेट्समैन माने जाएंगे, इस चीज का मापदंड यह है कि जो सारे भारत के हित में है उन चीजों में कानून पास किया जाता है कि नहीं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो सारे भारत के हित में है, वो मानवता के हित में है, वो प्रजातंत्र के हित में है, वो रूल ऑफ लॉ के हित में है, वो ह्यूमन डिग्निटी के हित में है, तो उनको जो है समर्थन मोदी सरकार से मिलना चाहिए।
भारत में पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग और गौरक्षकों द्वारा हिंसा की कई घटनाएं घटी हैं, जिनके दौरान जमा हुई भीड़ लोगों को पीट पीट कर मार देती है। इससे कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक घटना घटी जिसमें बच्चा चोरी के शक में एक भीड़ ने एक कार में सवार चार लोगों की जमकर पिटाई की। हिंसा में एक इंजीनियर की मौत हो गई। पिछले साल 29 जून को झारखंड के रामगढ़ शहर में अलीमुद्दीन अंसारी नामी एक व्यक्ति को एक भीड़ ने भरे बाजार में पीट पीट कर मार डाला था। बताया जा रहा है कि जब अभियुक्तों को जेल से रिहा किया गया तो केंद्र मंत्री जयंत सिन्हा ने कथित तौर पर उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। इस पर मंत्री ने खेद प्रकट किया है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
उधर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, जयंत सिन्हा, गिरिराज सिंह और नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग कर दी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को सुनिए।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है तो मोदी जी को राजधर्म निभाना पड़ेगा और वो पांच मंत्री जिन्होंने लिंच मॉब क्रिमिनल्स और मेंटालिटी का समर्थन किया है उनका इस्तीफा लेना पड़ेगा।
उधर कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी पलटवार की मुद्रा में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और कांग्रेस के आरोपों को लेकर मैंने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल से।
देखिए, ये जो कांग्रेस पॉलिटिसाइज करती है इन चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर को आप धर्म के आधार पर जहां देखोगे तो फिर वह लॉ एंड ऑर्डर फिर प्रॉब्लम नहीं रहता।
लेकिन ये जो सवाल उठाया जाता है कि जो लोग मॉब लिंचिंग के अक्यूज हैं, अगर आप उनका सम्मान करते हैं, आप इस तरह की घटनाओं को मामूली घटना बताते हैं, आप उनके समर्थन में बात करते हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए?
नहीं बिल्कुल, ये तो गलत है। एज ए पार्टी, मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ और पार्टी ने, अध्यक्ष जी ने, सबने भी कहा है कि हम किसी तरह की इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने काउ विजिलेंटिज्म के ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए थे। जो क्रिमिनल एलिमेंट है ऐसा मौके का फायदा उठा के इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, चाहे काउ विजिलेंटिज्म के नाम पे।
लेकिन जब ये सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपके मंत्री, चाहे महेश शर्मा का जैसे वो नाम लेते हैं जिन्होंने दादरी में जो घटना हुई अखलाक के साथ उसके बाद कहा कि एक मामूली घटना थी, इसी तरह गृह मंत्री राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने कहा ये मामूली घटना थी जो पहलू खान के साथ घटना हुई, उसके बाद जयंत सिन्हा का तो ताजा मामला है, इस तरह का जो संदेश जाता है उसके लिए पार्टी क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी?
नहीं आप बताओ, अखिलाफ के साथ दादरी में इंसिडेंस हुआ था तो उस वक्त तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? अखिलाफ के उसके परिवार को जाके वो उन्होंने कंपेंसेशन दे रहे हैं। रिलीजियस उसको डायमेंशन को करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेट होगी सिचुएशन। अब जयंत सिन्हा जी ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि वो बेल पे है, उसका भी प्रूफ नहीं हुआ है। फेलिसिटेशन, मतलब उन्होंने बताया कि मतलब आप लॉ को प्रीएम्प्ट करेंगे या धर्म के आधार पे करेंगे तो पॉलिटिसाइज अगर आप करते हैं तो वही तो प्रॉब्लम है। जहां तक एज ए पार्टी की बात है, पार्टी ने किसी चीज में इस तरह सपोर्ट नहीं किया इन लोगों के। इंडिविजुअल अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया उसको पार्टी की अध्यक्ष ने उनको लोगों को कर्ब किया है, मना किया है, और पार्टी एज ए ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह की इस एक्टिविटी को धर्म के नाम पर सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर क्रिमिनल एक्टिविटी को, अगर किसी को, मुसलमान को किसी हिंदू ने मार दिया या हिंदू को मुसलमान ने मार दिया, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसको हिंदू मुसलमान करके आप देखेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी देखे या
नहीं। सर ये जो सवाल है मॉब लिंचिंग का है, जैसे स्वामी अग्निवेश पर अभी से कुछ देर पहले हमला हुआ है और उनका भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग, भारतीय युवा मोर्चा के लोगों ने उन पर हमला किया है और उन्होंने भी कहा कि एक तरह की मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई है।
नहीं मैं तो यही तो कह रहा हूँ, तो अगर और उनके आरोप, स्वामी अग्निवेश जी का अपना भी पूरा डुबियस स्टेटमेंट होते हैं किस तरह से उनकी एक्टिविटी, ये एक्टिविस्ट जो है कई बार प्रोवोक करते हैं, और अभी उनके आरोप से ही आप कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग।
जी मैंने आरोप की ही बात की है, मैंने कहा उन्होंने आरोप
अगर लगाया लगाते हैं तो वो प्रूफ होने दे। भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ मेंबर हैं, अगर किसी ने कोई कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी तो उससे पार्टी जिम्मेदार हो गई। ये जो नरेशन क्रिएट किया जा रहा है, करने की कोशिश कर रहे हैं, या एक कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज वे से भारतीय जनता पार्टी करी, ऑर्गेनाइज वे से तो अपोजिशन कर रहे हैं इन सारी बातों को।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के कुछ घंटे बाद झारखंड के पाकुड़ जिले में सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर हमला हो गया। स्वामी अग्निवेश ने आरोप लगाया है कि उनकी लिंचिंग की कोशिश की गई। पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं रवि प्रकाश।
यह आवाज उस भीड़ की है जिसने आज दोपहर 1 बजे पाकुड़ के आंबेडकर चौक के पास स्वामी अग्निवेश पर जानलेवा हमला किया। तब वे पाकुड़ से कुछ किलोमीटर दूर लिट्टीपाड़ा कस्बे में एक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसका आयोजन आदिम जनजाति विकास समिति ने किया था। पाकुड़ में अपने होटल से निकलते ही स्वामी अग्निवेश वापस जाओ का नारा लगाते भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए और गालियां दी। स्वामी अग्निवेश के समर्थकों ने इस हमले के लिए भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवार ठहराया है। स्वामी अग्निवेश के प्रतिनिधि और बंधुआ मुक्ति मोर्चा के नेता मनोहर मानो ने बीबीसी से कहा,
यहाँ पर बहुत बुरी तरह से मॉब लिंचिंग टाइप हमला हुआ है पाकुड़ प्रखंड के अंतर्गत, और ये स्पॉन्सर्ड सरकार हमला लग रहा है। पुलिस वहाँ बैठी रही, किसी को रोका नहीं, या पुलिस आने के बाद गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई।
तब घटनास्थल पर मौजूद रहे पत्रकार रामप्रसाद सिन्हा ने बताया कि एवीवीपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश के पाकुड़ दौरे का विरोध कर रहे थे। इन लोगों ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए। तभी कुछ लोगों की भीड़ हिंसक हो उठी और स्वामी अग्निवेश पर हमला बोल दिया। हालांकि भाजपा युवा मोर्चा के पाकुड़ जिलाध्यक्ष प्रसन्न मिश्रा ने हमले में अपने लोगों का हाथ होने से इनकार किया है।
हमारे आदिवासी और पहाड़िया समाज हमारे संस्कृति और संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पाकुड़ में आके लिट्टीपाड़ा में ईसाई मिस्त्री के एजेंट पहाड़िया समाज को किस तरह ये ईसाई मिस्त्री में परिवर्तन हो जाए, किस तरह फिर से ये बच्चों का शोषण, महिलाओं का शोषण करने लगे और धर्म परिवर्तन का खेल हो। पाकुड़ को अल्पसंख्यक जिला घोषित किया गया है और इस जिले को ईसाई मिशनरी के रूप में ईसाई जिला घोषित किया जाए।
स्वामी अग्निवेश पर हमले के वक्त मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची में कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, तभी उन्हें इस हमले की सूचना दी गई। तब मुख्यमंत्री ने गृह सचिव SKG रहाटे को इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश दिया। पाकुड़ के SP सरेंद्र बर्नवाल ने मुझसे कहा कि पुलिस को उनके आने की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, अगर सूचना मिली होती तो पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा देती।
हम लोग को सूचना नहीं देगा, उनका जो अराइवल है उसके बाद पुलिस को जिला पत्रकार को सूचना।
इससे पूर्व स्वामी अग्निवेश ने कहा था कि उनके आने की विधिवत सूचना पहले से ही पुलिस और प्रशासन को दे दी गई थी। गौरतलब है कि स्वामी अग्निवेश पर पहले भी हमले हुए हैं। साल 2011 के 26 मार्च को छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में भी भीड़ ने उन पर हमला किया था। तब वे वहां के दोरनापाल में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर माओवाद समर्थक लोगों के गांव में आग लगाए जाने के बाद राहत बांटने गए थे। रवि प्रकाश, BBC रांची।
स्वामी अग्निवेश पाकुड़ क्यों गए थे और किस तरह उन पर हमला हुआ, मैंने ये सवाल खुद स्वामी अग्निवेश से किए।
मैं जीवित हूँ ईश्वर की कृपा से, वरना आज वो मुझे मार डालते। मर्डर से सॉल्व था ये जानलेवा हमला और ये BJP से जुड़ी हुई जो इनकी संस्थाएं हैं उनके द्वारा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा APBP आदि आदि सुबह उतरा मैं पाकुड़ और यहाँ मुझे अभी जाना था एक आदिम जनजाति के बहुत बड़े कार्यक्रम में, पहाड़िया जनजाति के। उनकी जमीनें फायर करके सरकार यहाँ बड़े बड़े कारपोरेट्स को दे रही है, तो प्रोटेस्ट करने के लिए जलसा बुलाए हुए थे, तो मैं उसमें भाग लेने के लिए आया। पत्रकारों से मैं बात कर रहा था तो फिर मैं नीचे उतरा हूँ और जैसे उतरा हूँ पत्रकार अभी वहीं खड़े सामने और उनके सामने मेरे ऊपर एकदम जानलेवा हमला कर दिया। माँ बहन की गंदी दवाइयाँ लात घूसो के मार रहे, पत्थर उठा के सिर पे मारना चाहते थे, सिर पे नहीं लगा, मेरे पसलियों पे लगा है, लग रहा पसलियाँ अंदर से टूट गई है, काफी दर्द हो रहा।
कितने लोग थे और क्या वो कह रहे थे, वो किस वजह से उन्होंने हमला किया?
कुछ भी नहीं पता ना, ये तो बात तो कोई कर ही नहीं रहा था। ये तो मैंने इनको कहा है, पुलिस के SP अभी आए काफी देर के बाद, जबकि इनको पुलिस प्रशासन थाने सबको लिखित जानकारी दी गई थी और इनके पास रसीद है जो ऑर्गेनाइजर है, इनके पास ऐसे ऐसे आ रहे हैं वहाँ जाएंगे इस मुद्दे पर। मैंने खुद चिट्ठी लिखे CM रघुवर दास को, पहले जानकारी दी थी कि मैं आ रहा हूँ रांची से, उधर जाऊंगा पाकुड़ और मैं आपसे भी मिलकर इस पर बात करना चाहता हूँ। और गवर्नर ने तो मुझे टाइम भी दिया कल सुबह का।
पूरा जो घटनाक्रम हुआ है और आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, ये कैसे आइडेंटिफिकेशन इनका हुआ?
स्थानीय लोग मुझे बता रहे हैं ये वो लोग हैं, ये लोग उनको पहचानते हैं, BJP से जुड़े हुए लोग थे।
इस मामले में क्या आपने कोई रिपोर्ट की है, पुलिस का क्या कहना है?
नहीं, पुलिस को वो अभी SP आए मेरे पास काफी देर पर, तो मैंने उनको बताया और वो अपनी रिपोर्ट वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं वो करेंगे। मैंने अपनी तरफ से कुछ लिखाया नहीं है, लेकिन मुझे कहेंगे तो मैं तुरंत उसको FIR कराना चाहूंगा।
तो क्या आपको ऐसा कोई अंदेशा, कोई आशंका थी कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है? सुरक्षा के क्या इंतजाम थे?
सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था, जबकि स्थानीय लोगों ने ऑर्गेनाइजर से उनको पूरी सूचना दी थी जिस समय मेरे ऊपर अटैक हुआ और वो घंटों की तैयारी करके बैठे हुए थे सामने। लेकिन पुलिस का एक सिपाही जब मेरे को मारा पीटा तब भी कोई एक पुलिस का सिपाही नहीं था। देर से काफी देर के बाद जब मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया यहाँ मिस्टर त्रिपाठी को, तब उन्होंने कहा कि मैं भेजता हूँ ये।
आपको जानकारी ही होगी स्वामी जी, आज मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त रुख दिखाया है और संसद से कहा है कि कानून बनाया जाए इसको लेकर एक नया, क्या ये हमला भी उसी तरह का हमला है?
ये बिल्कुल, अभी पिछले दिनों जो घटनाएं घट रही हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, वो जो मॉब लिंचिंग में बेकसूर लोगों की हत्या हो रही है, घायल हो रहे हैं, उसी तरह से आज मेरे साथ ये घटना घटी है। मेरी उम्र अभी 21 सितंबर को 80 साल होने जा रही है, तो मेरे साथ अभी ये घटना घटी पहली बार।
जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया ये क्या संदेश देना चाहते थे?
बस ये कानून अपने हाथ में लेकर के जो वो समझ रहे हैं इसको क्या सजा देनी है वो दे रहे, सीधी सी बात। ये सीधे सीधे मॉब अटैक, मॉब लिंचिंग इस तरह के लोग हैं और ये किसी को कुछ भी नहीं समझते और कुछ लोगों को ये स्थानीय लोग समझ पहचान रहे करें कि ये बड़े गुंडे लोग हैं।
ये थे स्वामी अग्निवेश। ये BBC हिंदी है और आप सुन रहे हैं दिन भर। अगली खबर, जिसे लेकर कई विश्लेषक राजनीति के बदलते समीकरणों का अंदाजा लगाने की कोशिश में हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपनी पार्टी के एक उपाध्यक्ष को पद से हटा दिया है। हटाए गए उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी जिस पर विवाद हो गया था। पूरी रिपोर्ट समीर आत्मज मिश्र से।
एक दिन पहले लखनऊ में बीएसपी की जोनल बैठक में पार्टी उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह उत्साह में वो सब कुछ बोल देना चाहते थे जो उनकी नेता को अच्छा लगे, लेकिन ये समझने में शायद भूल कर बैठे कि राहुल गांधी के खिलाफ ये टिप्पणी उनकी नेता को पसंद आएगी भी या नहीं।
एक बच्चा या तो माँ पे जाता है या बाप पे जाता है। अगर राहुल गांधी अपने बाप राजीव गांधी पे चला जाता तो एक बार के लिए भारत की राजनीति में सफल हो भी सकता था, लेकिन वो अपनी माँ पे चला गया और उसकी माँ विदेश की है, उसका खून विदेशी है। वो मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारत की राजनीति में राहुल गांधी कभी सफल नहीं हो सकता।
जयप्रकाश सिंह को इसका जवाब 24 घंटे के भीतर मिल गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने तत्काल बयान जारी कर साफ कर दिया कि पार्टी में राजनीतिक टिप्पणी करने का अधिकार उनके अलावा और किसी को नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी के कारण जयप्रकाश सिंह पर कड़ी कार्रवाई की और उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया।
श्री जयप्रकाश सिंह द्वारा दिए गए भाषण के बारे में ये जानकारी मिली है कि उसने कल अपनी विरोधी पार्टियों के सर्वोच्च राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भी काफी कुछ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करके उनके बारे में काफी अनर्गल बातें भी कही हैं, जो बीएसपी के कल्चर के पूरे तौर से विरुद्ध है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए आज हमारी पार्टी ने नए नए बने बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जय प्रकाश सिंह को उनके इस पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और साथ ही इनको आज ही बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया गया है।
हालांकि जयप्रकाश सिंह को भी पार्टी से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिदायत दी है कि वो गठबंधन या फिर ऐसे मसलों पर कोई बयान न दें। जानकारों के मुताबिक जयप्रकाश सिंह के खिलाफ कार्रवाई करके उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। लखनऊ में आयोजित बीएसपी के कैडर कैंप में जयप्रकाश सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ ये टिप्पणी की थी। इस सम्मेलन में जयप्रकाश सिंह और कुछ अन्य नेताओं ने बीएसपी नेता मायावती को भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी पेश किया था। बीएसपी के युवा नेता जयप्रकाश सिंह करीब 1.5 महीने पहले ही पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
अगली खबर असम से। असम का नाम देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां ट्रांसजेंडर जज कार्यरत हैं। जज स्वाति बरुआ ने शनिवार को कामरूप जिले में अपना कार्यभार संभाला। उनसे बात करने के बाद ये रिपोर्ट भेजी है दिलीप कुमार शर्मा ने।
गुवाहाटी में रहने वाली 26 वर्षीय स्वाति बरुआ की पहचान अब एक ट्रांसजेंडर जज के तौर पर होगी। कई विवाद और परिवार वालों की नाराजगी का सामना कर चुकी स्वाति जीवन में हार न मानने का जज्बा रखती है। वह अपने संघर्ष से सबक लेकर ट्रांसजेंडर समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे उनके साथ कोई भेदभाव न करे। बीकॉम के बाद कानून की पढ़ाई पूरी कर चुकी स्वाति ने अपनी इस उपलब्धि पर बीबीसी से कहा।
नहीं देखिए, ये हम संपूर्ण रूप से तो ये कह नहीं सकते कि ट्रांसजेंडरों के समुदाय का ये सेटल हो चुका है, उनके प्रॉब्लम और इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं। ये एक सिर्फ छोटा सा स्टेप है जो बाद में जाके कम्युनिटी को एनकरेज करेगा या समाज को भी सेंसिटाइज करेगा। अब ये तो हमारा रोज का सिलसिला है, हम कहीं पे भी जाते हैं बैठे तो लोगों में ये फुसफुसाहट होती है कि ये अरे ये कौन है, ये ना लड़का है ना लड़की है, इससे दूरी बनाए रखो।
ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता स्वाति बरुआ द्वारा जज की कुर्सी तक पहुंचने की यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 2012 तक स्वाति एक पुरुष हुआ करती थी, इसके बाद उन्होंने सर्जरी करवाई और लड़के से लड़की बन गई और अपना नाम विधान से स्वाति रख लिया। स्वाति के इस फैसले का पहले तो उनके परिवार ने काफी विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने स्वाति को अपना लिया। अपनी सर्जरी को लेकर स्वाति को बॉम्बे हाईकोर्ट का भी रुख करना पड़ा। ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले आशीष कुमार दे कहते हैं,
देखिए ये तो बहुत खुशी की बात है जो मैंने एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक लीडर विधान बरुआ बहुत दिन से काम कर रही है, बहुत लड़ाई लड़ रही है, यहाँ PIL भी फाइल कर चुकी है, ट्रांसजेंडर बोर्ड जो सोशल वेलफेयर के साथ बनना था जो अभी तक नहीं बना है उसके लिए बहुत लड़ाई इन्होंने लड़ रही है। तो डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा एक कदम है या कह सकते हैं एक माइलस्टोन है जो विधान बरुआ को एक स्वीकृति मिलना माने इस टोटल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एक स्वीकृति मिलना है।
असम से पहले पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ट्रांसजेंडर को जज बनाया जा चुका है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल ने साल 2017 में ज्योयता मंडल को जज बनाया था। स्वाति बतौर जज अब अदालत में पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों को देखेंगे। जो लोग ट्रांसजेंडरों का मजाक उड़ाते हैं वो अब स्वाति को जज के रूप में फैसला सुनाते भी देखेंगे। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में 25 जुलाई को चुनाव होने हैं। वहां चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार बैनर पोस्टर से लेकर सोशल मीडिया तक का सहारा ले रहे हैं। ये तरीके कितने कारगर साबित हो रहे हैं, जानते हैं BBC संवाददाता इजहार उल्लाह की इस रिपोर्ट में, जिसे आवाज दी है मोहनलाल शर्मा ने।
पेशावर में सदियों पुराना मोहल्ला जंगी चुनाव आते ही यहाँ बाहर आ जाती है। यहाँ लगे प्रिंटिंग प्रेस में दिन रात एक ही काम चलता है, चुनावी उम्मीदवारों के इश्तेहार और पोस्टर छापना। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक नेशनल असेंबली उम्मीदवार अपनी प्रचार सामग्री पर 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं और विधानसभा उम्मीदवार 20 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इस रकम का बड़ा हिस्सा इन्हीं छापे खानों में खर्च होता है। पेशावर में एक उम्मीदवार कामरान बंगश कहते हैं,
थ्रू एडवर्टाइजमेंट मासेस तक पहुंचने में आसानी होती है। कैंडिडेट्स को इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि आपको अपना टैग लाइन, आपको अपना स्लोगन जो है वो पब्लिक तक पहुंचाना होता है, आपको अपनी पार्टी, अपना सिंबल, इलेक्शन सिंबल, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मासेस तक पहुंचने के लिए आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसका बड़ा फ़ायदा होता है।
आजकल चुनाव प्रचार के नए तरीके भी आ गए हैं जिनमें सोशल मीडिया की अहमियत बढ़ गई है। इस पर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया संयोजक मोहम्मद फुकरान बताते हैं,
गैर रिवायती तरीके जो है अब वो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया आपकी आ जाती है, डिजिटल साइंस आ जाता है, बल्कि SMS आते हैं, वॉइस कॉल्स आती हैं, तो वो मीडियम ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और उससे आप ज़्यादा मैसेज भी दे सकते हैं और उसका बड़ा फायदा ये होता है कि आपको फीडबैक मिलता है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इश्तिहार किसी भी व्यक्ति के वोट डालने के फैसले को किस तरह प्रभावित करते हैं।
मैं उस कैंडिडेट को पहचानूंगा, देखूंगा, तब मैं वोट दूंगा। तो पब्लिसिटी जो है, पोस्टर वगैरह लगाना, ये वोट, मैं अपना वोट इस हिसाब से तकरीबन 50% मैं इस हिसाब से दूंगा।
इश्तिहार का तो कोई मकसद नहीं है, लोगों को देखना चाहिए कि जब से ये लोग खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स इलेक्शन में पास हो जाते हैं, उन लोगों ने किस दौर हुकूमत में 5 साल मुकम्मल किए, किसने कितना काम किया।
पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2013 के चुनावों पर एक अध्ययन किया था जिसमें ये पाया गया कि इश्तिहार और बैनर लोगों के जहन पर कोई खास असर नहीं डालते। पेशावर यूनिवर्सिटी में जनसंचार विभाग में प्रोफेसर अल्ताफ उल्लाह खान का कहना है,
अगर आप इश्तिहार नहीं लगाएंगे और दूसरा लगाएगा तो यकीनन एक तो आपका वोटर मायूस होगा कि जी हमारी तो कैंपेन ही नहीं चल रही, तो जो आपका पक्का वोटर है वो भी सोचेगा कि भाई शायद उम्मीदवार सीरियस नहीं, वो संजीदा नहीं ले रहा। ज़्यादातर शहरी इलाकों में इसका असर होता है। गांव वगैरह में जो रूरल है उसमें इलेक्टेबल्स की सियासत, जैसे अभी हम देख रहे हैं, बहुत एतराज हर दफ़ा होता है।
उम्मीदवारों की चुनाव सामग्री की अहमियत पर राय एक तरफ, लेकिन लोग अब भी उम्मीदवार के चाल चरित्र, खानदान और साख पर भी नज़र रखते हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे मोहनलाल शर्मा। और इस बीच खेल की खबरों का अपडेट देने के लिए आ चुकी हैं ज्योतिका सिंह।
जी 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और अभी भारत बल्लेबाजी कर रहा है, जहां स्कोर 42 ओवर में 201 रन हो चुके हैं और 6 विकेट का नुकसान।
जी, मुश्किल में दिख रहा है भारत।
बिल्कुल टीम इंडिया के उन्होंने धीमी शुरुआत करी थी। 6ठे ओवर में टीम इंडिया को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डेविड विली ने पहला झटका दिया था। उन्होंने रोहित शर्मा को 2 रन पर आउट कर दिया था।
रोहित शर्मा नहीं चले, लेकिन शिखर धवन ने 44 रन बनाए और कप्तान ने 71 रन बनाए। अब दारोमदार धोनी पर है।
बिल्कुल 71 रन के निजी स्कोर पर इंग्लैंड के स्पिनर राशिद ने बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया।
ज्योतिका, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। और चलते चलते मुख्य समाचार कुलदीप मिश्र से।
BBC समाचार। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज मॉब लिंचिंग को अलग अपराध की श्रेणी में रखने की बात कही और सरकार से कहा कि इसकी रोकथाम के लिए वो एक नया कानून बनाए। यूरोपीय संघ और जापान ने एक मुक्त व्यापार समझौता किया है जो दोनों तरफ के व्यापार पर लगने वाले सीमा शुल्क को पूरी तरह लगभग खत्म कर देगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने संसद को बताया है कि बलात्कार के मामलों में अस्पष्टता को खत्म करने के लिए उनकी सरकार यौन सहमति पर एक नया कानून लाएगी। सीरिया के दर्जनों आम नागरिकों ने गोलान हाइट्स में इसराइली सेना के ठिकानों पर पहुंचकर शरण या किसी और तरह की मदद मांगी है। इनमें से कुछ सफेद झंडे भी लेकर पहुंचे थे। BBC समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे कपिल देव सिंह, फेसबुक प्रसारण में मदद की मीना कोटवाल ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।